Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Thank you for joining us on Vilayat News. I'm Abru Sabzwari, and now a look at the headlines for today. At least 500 Al-Qaeda militants escape Iraq's Abu Ghraib prison. In Egypt, at least 4 people have been killed and more than 20 injured in clashes between pro- and anti-Morsi protesters. Thousands flee the conflict in South Sudan. A strong earthquake in China kills 89 people and injures over 400 others. American whistleblower Snowden to leave the Moscow airport by Wednesday. U.S. congressional hurdles lifted on arming Syrian rebels. And an exclusive phone interview with MWM Pakistan's Secretary General Allama Rajan Nasir Abbas and MWM Pakistan's political secretary Sayyid Nasir Abbas Shirazi on the attack of Lady Zainab's shrine. And now, the news in detail. At least 500 inmates, including senior members of Al-Qaeda, broke out of Iraq's Abu Ghraib jail as comrades launched a military-style assault to set them free. The deadly raid on the high-security jail happened as Sunni Muslim militants were gaining momentum in their insurgency against the Shia-led government that came to power after the U.S. invasion to oust Saddam Hussein. Suicide bombers drove cars packed with explosives to the gates of the prison on the outskirts of Baghdad on Sunday night and blasted their way into the compound while gunmen attacked guards with mortars and rocket-propelled grenades. Other militants took up positions near the main road, fighting off security reinforcements sent from Baghdad as several militants wearing suicide vests entered the prison on foot to help free the inmates. 10 policemen and 4 militants were killed in the ensuing clashes, which continued until Monday morning when military helicopters arrived, helping to regain control. By that time, hundreds of inmates had succeeded in fleeing Abu Ghraib, the prison that made notorious a decade ago by photographs showing abuse of prisoners by U.S. soldiers. Hakim al-Zamili, a senior member of the Security and Defense Committee in Parliament, said the number of escaped inmates has reached 500. Most of them were convicted senior members of Al-Qaeda and had received death sentences. The increasing violence in Iraq has raised fears of a return to full-blown conflict in a country where Kurds, Shia, and Sunni Muslims have yet to find a stable way of sharing power. Recent attacks have targeted mosques, amateur football matches, shopping areas, and cafes where people gather to socialize after breaking their daily fast for the holy Muslim month of Ramadan. Relations between Islam's 2 main denominations have been put under further strain from the civil war in Syria, which has drawn in Shia and Sunni fighters from Iraq and beyond to fight against each other. Nearly 600 people have been killed in militant attacks across Iraq so far this month, according to violence monitoring group Iraq Body Count. 4 people have been killed and dozens others injured as supporters and opponents of Egypt's ousted President Mohamed Morsi clashed in Cairo. Security sources said that 3 people died in clashes in Qalyub province north of Cairo. A 4th person died in the hospital after being hit by gunfire during clashes near Cairo's Tahrir Square. Medical officials said that at least another 26 people were injured in the violence in which the rival camps exchanged volleys of stone and birdshot. Police fired tear gas in a bid to disperse the clashing demonstrators. Earlier in the day, Morsi's family said they have planned to sue the military for having kidnapped the elected president. Morsi's daughter, Shema Mohammed Morsi, said at a news conference that we are taking local and international legal measures against Abdel Fattah al-Sisi, the leader of the bloody military coup, and his group. Morsi's son, Osama, also said that the family had not heard from Morsi since his ouster and that they hold the army responsible for his health and safety. The United Nations Refugee Agency says thousands of people living in South Sudan have fled deadly fighting raging in the country's Jonglei state and sought refuge in neighboring Ethiopia. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, said in a Sunday statement that since last May, some 5,000 South Sudanese arrived in Western Ethiopia and sought refuge. Clashes between the South Sudan People's Liberation Army, SPLA, and militants led by David Yao Yao in the eastern state erupted in March. In May, the head of the UN mission in South Sudan said due to lack of troops and aircraft, the United Nations peacekeepers in the African country are not able to protect civilians affected by the fighting. The UN humanitarian coordinator in South Sudan, Toby Lanzer, said in a statement released on July 14th that nearly 200 civilians were injured in violent clashes between rival tribes in Jonglei State. South Sudan seceded from the Republic of Sudan on July 9th, 2011, after decades of conflict with Khartoum. The new oil-rich nation is one of the least developed countries in the world, with 1 in 7 children dying before the age of 5. The death toll from the earthquake that hit China's northwest Gansu province has risen to 89, with more than 400 injured, according to reports from the Xinhua News Agency. Local authorities continue to search for victims of the 6.6 magnitude quake. At least 5 people are still reported as missing after the disaster. The quake hit near the city of Dingxi in Gansu province, one of the least populated in the whole country. However, the Dingxi area has a great concentration of farms and towns. The China Earthquake Administration is closely monitoring the seismic situation in the region and has sent disaster relief teams to the scene. Authorities dispatched troops, police officers, and local militia to the affected area to assist in rescue operations. Former contractor of the U.S. National Security Agency, Edward Snowden, is set to leave the transit area of Moscow's main international airport on Wednesday after 1 month, according to reports from his lawyer. He added that the American leaker would move to the city center and canceled his possible trip to Latin America due to safety measures. The United States has been trying to return Snowden to the country to put him on trial for espionage charges after he blew the whistle on the U.S. government's secret data collection program. On July 16th, the whistleblower applied for temporary asylum in Russia, but his application could take up to 3 months to process. His month-long stay at Sheremetyevo Airport has strained relations between the United States and Russia. U.S. President Barack Obama called his Russian counterpart Vladimir Putin to convince him to extradite Snowden. But Putin has so far refused the request and said Washington trapped former spy agency contractor in Moscow. The Obama administration has repeatedly warned Russia about consequences of Moscow's refusal. President Barack Obama should be able to go ahead with a plan to arm the Syrian rebels after some congressional concerns were eased, according to the chairman of the House of Representatives Intelligence Committee. Both Republicans and Democrats on the House and Senate Intelligence Committees had expressed worries about whether the administration's plan would succeed, delaying weapons deliveries to the Syrian opposition. The White House announced in June that it would offer military aid to vetted groups of Syrian rebels after 2 years of balking at directly sending arms to the opposition in the civil war. But lawmakers held up the project, complaining that the plan might not tip the balance in Syria in favor of forces fighting President Bashar al-Assad, and that weapons could end up in the hands of Islamist militants. Last week, a senior administration official said that members of the Senate Intelligence Committee who had questioned the wisdom of arming the insurgents had tentatively agreed that the administration could go ahead with its plans, but sought updates as the covert effort proceeded. The House has now given a cautious go-ahead. After the attack on the shrine of Lady Zainab a.s. in Syria, the Syrian army has launched a special operation around the holy shrine in the south of the capital, Damascus, after it was attacked by foreign-backed insurgents. Syrian army soldiers launched an operation in which they restored security to the shrine and its surrounding area and cleared all neighborhoods from terrorists. On Friday, several mortar shells fired by foreign-backed terrorist groups hit the holy shrine, killing the custodian of the facility. In a widely condemned attack, anti-government insurgents attacked the grave of one of Prophet Muhammad's dignified companions, Hujr ibn Adi al-Kindi, in Adra, pulling out the body and taking it to an unknown location. Al-Qaeda-linked Al-Nusra Front terrorists also destroyed the historic mausoleum of Prophet Abraham, peace be upon him, with bulldozers in the eastern town of Ain al-Arus in the province of Raqqa. Attacks on mosques in different cities have also left hundreds of people dead, most of them while offering daily prayers. Vilayat TV CEO and host of the Noor-e Vilayat program, Hujjatul Islam Maulana Zahirul Hassan Naqvi, strongly condemned the attack on Sayyida Zainab's shrine. Hujjatul Islam Maulana Sayyid Talmiz Hasnain Rizvi, the guest scholar on the Noor-e Vilayat program, along with Maulana Zahirul Hassan Naqvi, both appealed to the North American Shia and Sunni Muslim organizations and religious scholars to come forward and take united action against the Takfiri elements who are misrepresenting the image of Islam. Maulana Zahirul Hassan Naqvi also conducted a live telephone interview with MWM Pakistan's Secretary General Allama Raja Nasir Abbas and MWM Pakistan's political secretary Sayyid Nasir Abbas Shirazi. Allama Raja Nasir Abbas and Sayyid Nasir Abbas Shirazi both condemned the attack and emphasized the importance of unity among Shia and Sunni Muslims. They demanded the Islamic Ummah join together to expose the barbaric Takfiri elements who are destroying the peaceful face of Islam. They also condemned the Saudi, Qatari, and other Gulf kingdoms who are openly funding and arming the Takfiris to prolong their illegitimate family rules. Let's take a look at the interview.
ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین راجہ ناصر عباس صاحب پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی راجہ صاحب, میرے ساتھ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیز حسنین رضوی صاحب بھی موجود ہیں, اور سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے نور ولایت پروگرام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں اس عظیم سانحہ پر جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آیا ہے. ناظرین محترم, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان سے ناصر ملت حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب, جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں وحدت المسلمین پاکستان کے. راجہ صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے ریئیکشن کیا ہے, پاکستان میں اس وقت کیا ریئیکشن ہو رہا ہے, کیا آپ اسے راضی ہیں, سیٹسفائی ہیں, اور نارتھ امریکہ کے اندر موجود مومنین اور مومنات اور پوری دنیا کے اندر جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, آپ کا ان کے لیے پیغام کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راجہ صاحب,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام جو ناظرین ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دیکھیے, جو سانحہ رونما ہوا ہے اس کے واقع ہونے سے پہلے باقاعدہ اس کے کچھ مقدمات طے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے بعض مفتیوں نے فتوے دیے ہیں جو تکفیری لوگ ہیں, جو اپنے علاوہ تمام باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں, ان کے علاوہ دوسرے اہل سنت مسلمان بھائی بھی کافر ہیں, اور اہل تشیع کے بارے میں بھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں, جو ان کو نہیں مانتا ان کی بات نہیں مانتا, یہ اسلحے کے زور پر طاقت کے زور پر اپنی بات ٹھونسنا چاہتے ہیں. یہ افغانستان سے لے کر سیریا تک, مصر تک, یمن اور پورے جہان اسلام کے اندر موجود ہیں, حتیٰ یورپ کے ممالک میں بھی یہ لوگ نفوذ کر چکے ہیں. یہ تکفیری ٹولہ جو انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, اس کے مفتیوں نے سعودی عرب سے فتوے دیے کہ وہ ثانی زہرا رسول خدا کی نواسی, آخری نبی کی نواسی, ہمارے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نواسی کے حرم کو ہم گرائیں گے. اس سے پہلے انہوں نے صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی کے حرم کی بے حرمتی کی, ان کی قبر کی بے حرمتی کی, اور اسی طرح سے باقی مقدسات کی بھی حرمتی کر چکے ہیں. وہ تو ان کے اس فتوے کے نتیجے میں وہاں پر جو ان کے پیروکار ہیں, جو تکفیری ٹولہ ہے, انہوں نے جناب ثانی زہرا کے حرم کو نشانہ بنایا, اور وہاں اس سے پہلے کافی لوگ موجود تھے جو اس حرم کی حفاظت کر رہے تھے, ان کے حملوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا, لیکن یہ مارٹر انہوں نے فائر کیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے حرم جناب ثانی زہرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. میرے خیال میں یہ نابود سے رسالت کی توہین ہے. تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سراپا احتجاج ہوں. اگر وہ ان کا راستہ نہیں روکیں گے تو یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے پہلے بقی کے اندر اولیاء اللہ کی, اہل بیت رسول کی, آئمہ کی, और रसूल खुदा की इस तरह अलबैत की कब्रों को बिस्मार किया। अगर आलम इस्लाम का खौफ और दबाव ना होता तो ये रोजा रसूल को भी बिस्मार कर देते। लिहाजा इस ऐसी एक इंतहाई नेगेटिव फोर्स के मुकाबले में पूरे जहान इस्लाम को स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ये तोहीन है नाहूस रसालत की, जिस तरह से बाकी कामों में जब रसूलुल्लाह की तोहीन की जाती है तो पूरे दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज होते हैं। इस मसले को भी रसूल खुदा की नवासी के हरम को गिराना, जिनकी निस्बत रसूल के साथ है, वो रसूल खुदा की बेटी है, वो कर्बला की शेरदिल खातून है, जिन्होंने यजीदियत के खिलाफ और कुफर के खिलाफ क्याम किया और मजलूमों के हकूक की मुकद्दस जंग लड़ने के लिए वो मदीना से कर्बला और कर्बला से कुफर शाम गई है। तो इस वक्त जिम्मेदारी और सबकी ड्यूटी ये है तमाम मुसलमानों की कि वो इस मसले को आसान न लें, बल्कि इसको इस पर स्टैंड लें, मजम्मत करें, महकूम करें और तकफीरी टोले को आइसोलेट करें, इसे रुसवा करें। ये मसला एक दो दिन का नहीं है बल्कि इसे जिंदा रखा जाए। यूनाइटेड नेशन को भी इस हवाले से कंडेम करना चाहिए, दुनिया के जितने भी इदारे हैं हमें अहले सुन्नत भाइयों से भी राबता करना चाहिए, इंसानी हकूक के इदारे से भी राबते करने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और हुकूमतों को, मुसलमान हुकूमतों को, OIC को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए और वो ममालिक बिलखसूस जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की है, कतर है, सऊदी अरब है और इस तरह के इनके साथी हरामी ममालिक जो हैं, इन सब की मजम्मत करनी चाहिए और इनको इनसे भी पूछना चाहिए कि आपकी सपोर्ट की वजह से, आपकी मदद की वजह से, आपके साथ की वजह से इन लोगों में ये जरूरत पैदा हुई है कि पूरी दुनिया से आप दहशतगर्द वहां इकट्ठे करके मुकदस मुकामात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के मुसलमानों को, तमाम बाज़मीर लोगों को सरापा एहतजाज बनना चाहिए। सानी ज़हरा वस्ती हैं जिन्होंने दीन बचाया, जिन्होंने इस्लाम बचाया, जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को बचाया, उनका एहसान है पूरी बशरियत के ऊपर। लिहाजा तमाम इंसानियत और बशरियत और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से खामोश न रहे, आइमा जुमे के खुतबों में से कंडेम करें, जितने भी इनको सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उनकी एम्बेसीज को बकायदा लेटर लिखे जाए या दाखिल लिखी जाए, एतराज किया जाए, यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर एतराज होने चाहिए। बाकायदा इसको खामोशी की नजर नहीं करने देना चाहिए, ये मामला जिंदा रहना चाहिए। यही अगर हम इस बंद को, जब उन्होंने फतवे दिए थे, स्टैंड लिए जाते तो शायद आज ये बात न होती।
नासर भाई, आप थोड़ा सा इसका तजिया तहलील कीजिए और फरमाइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आलम इस्लाम का रिएक्शन क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है और ये सब जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने कहा साजिद, वाकई हर मुसलमान बिला तफरीक के उसका किस मसलक से ताल्लुक है वो इस साने पर दुखी है
जी।
और अल्फाज भी मिल रहे हैं कि वो किस जरिए से बयान करे कि ये जो अलबिया हुआ है शाम के अंदर, और बदकिस्मती के साथ कि इस अलबिये के पीछे भी नाम नयाज मुसलमान है।
सही, बिल्कुल।
एक बात बड़ी क्लियर हो कि पूरी दुनिया में सामने आ गई है वो ये है कि एक मखसूस जहनीत के जो तकशीरी जहनीत है, जो अपने अलावा किसी को दुरुस्त नहीं समझती, अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझती, और वो इस हद तक गिरी हुई है कि वो जहनीत उसके मुकाबले में जो आता है उसके लिए हर ताकत का वो जरिया, हर बर्बरियत का वो जरिया कि जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा होती है, वो इख्तियार करने के लिए आमादा और तैयार होती है।
सही, सही।
इस जहनीत को हम शाम के अंदर अपने अरूज के ऊपर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने मुखालफीन के जिगर निकाल के कच्चा उसको चबाने की रस्म को भी अदा करते हैं। हम देखते हैं कि तारीख इस्लाम के अंदर जिसकी मिसाल असलन नहीं मिलती कि कब्र को उसकी नविश करना, यानी कब्र को निकालना, मिसवार करना, इसकी ये तो इनकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। तो हम देखते हैं कि ये काम भी किया जाता है और बदकिस्मती के साथ ये सारे काम, लोगों के गले काटने का नाम, ये सारे काम जो है वो इस्लाम के नाम पर किए जाते हैं। तो असल में ये एक मखसूस ग्रोह इस्लाम के पाको पाकिजा चेहरे को दागदार करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर फाल है, मसरूफ है और यही काम कर रहा है। शाम के अंदर इस ग्रोह ने भरपूर तरीके से फालियत की है और अपनी बर्बरियत का भरपूर इजहार किया है। तो मुसलमानों के लिए मोहब्बत के बराकस अहले बैत और असहाबे किराम, अगर हम देखें तो शाम के अंदर अहले बैत का भी मरकज है जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, कि जिन्होंने पूरी आलम इंसानियत को वाकई जो किरदार उन्होंने अदा किया उसके नतीजे में आज इंसानियत को इंसानियत के साथ शनासाई हासिल हुई है। और इन लोगों ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की गुरबत को पामाल किया, उसके ऊपर हमले किए और ऐलानिया तौर पर इजहार किया इन्हें जैसे ही मौका मिला ये उसकी गुरबत को पामाल करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी शाम के अंदर बुजुर्ग साहबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाजिर बिन अर्दी उनके मज़ार को नस्वार किया जाता है और ना फकत ये कि नक्शे कब्र की जाती है बल्कि जो बाज इतलात मिली है कि जस्ट मुजहर को वहां से निकाल कर उसको भी नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जाता है। तो ये अजीब बर्बरियत है कि नाम भी इस्लाम के लिया जा रहा है और इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को भी दागदार किया जा रहा है और एक ऐसी बदतरीन जबर और तशद्दुद की कैफियत जो है वो सामने लाई जा रही है कि जिसका अल्टीमेट टारगेट अगर मैं समझूं कि आप बिलाखिर यूरोप के अंदर बैठे हैं, अमेरिका के अंदर आपकी बेस स्टेशन है, तो वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम के लिए जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इस्लाम के पास पाकिस्तान चेहरे की तरफ जो रगबत बढ़ रही है पूरी दुनिया की, उसको रोकने के लिए ये डरावना खेल खेला जा रहा है और इस्लाम के पाकिजा चेहरे को मशक करके दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। ये सब जो है वो शाम के अंदर हो रहा है और ये जो ताजा दिलों को खून कर देने वाला सानिया हुआ है कि पैगंबर की ये समझे कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला ये कल्ब पैगंबर के ऊपर हमला है, हजरत नबी की मज़ार के ऊपर हमला ये कल्ब पैगंबर के ऊपर हमला है। तो इन लोगों ने पैगंबर से मंसूब जो दो कीमती तरीन मता है उनको हर्ट करके आलम इस्लाम के दिलों को भी हर्ट किया है और कल्ब पैगंबर को भी हर्ट किया है।
The Syria crisis started in March 2011 and has transpired as one of the bloodiest conflicts in recent history. As the foreign-backed insurgency in Syria continues without an end in sight, the U.S. government boosts its political and military support to the Kfiri extremists. During this holy month of Ramadan, we request all of you to please remember the Muslim families and innocent children suffering all across the world in Syria, Pakistan, Iraq, Afghanistan, Palestine, Turkey, Egypt, and wherever else the Muslim Ummah is facing turmoil. Please also remember to pray for and support the families of the Shuhada who are being brutally tortured and killed for being Shia. And that brings us to the end of our bulletin today. If you'd like to contribute your community's news, you can email us at news@vilayattv.org. You can also get the latest headlines and more by visiting our website, vilayattv.org, or subscribe to and follow us on our YouTube and Facebook pages, Vilayat TV USA. Many thanks for joining us. Till next time, I'm Abru Sabzwari. Fi amanillah.